ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सब जानते हो आज एक खास शुभ दिन है। क्या है? तो पहले हम 10 मिनट के लिए भागवतम का एक श्लोक की चर्चा करेंगे, उसके पश्चात आज के महत्वपूर्ण दिवस के विषय में, ठीक है? क्योंकि भागवतम का थोड़ी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो आज हम 5वें स्कंद 12वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। ओम ज्ञातमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्ट साविदामे स्वयं रूपाकलां जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदा। हरे कृष्ण। श्लोक का उच्चारण जल्द भारत कर रहे हैं और भगवतम के 5वें स्कंद में जल भारत और महाराज रघुगुना की कथा पढ़ते हो। राजा रघुगुना जा रहे थे कथा सुनने के लिए और उन दिनों में जो राजा और प्रसिद्ध व्यक्ति थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था और राजा चाहता था तेजी से चले। तो उनके सेवकों ने एक लंबा बड़े कंधों वाला व्यक्ति देखा जिसका नाम था जल भारत। उसे कहा राजा को उठाने में सहयोग दो, पर पलकी तेजी की बजाय धीमे जाने लगी क्योंकि जल भारत ऊंचे कोटि का ब्राह्मण था। पैरों को नीचे रखने से पहले ये देख रहा था कोई चींटी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते। राजा को क्रोध आया, मैं कह रहा था तेजी से चलो और तुम ज़्यादा धीमे चल रहे हो। सेवकों ने कहा हमारा दोष नहीं, ये जो नया व्यक्ति जोड़ा है उसका दोष है। तो राजा ने डांटा। शुरू में तो जल भारत ने सह लिया, फिर जब जल भारत बोले तो राजा समझ पाए ये कोई भैरा गूंगा व्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मज्ञानी है। राजा उनके शरणागत हुए और माफी मांगी। तो राजा ने उन्हें उनसे उपदेश लिया और जल भारत इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त करना चाहिए। उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। भागवतम के 4वें स्कंद में नारद मुनि ने कहा कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम भक्तों की संगत, समानता के भक्तों की संगत और हमसे कम ज्ञान के व्यक्तियों की संगत। जब हमें उत्तम भक्तों की संगत प्राप्त होती है तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी जिसके सहयोग से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और भागवतम में एक उदाहरण दिया जाता है, मोर जब बादल को देखता है पहली बार तो खुशी में नाचता है। तो उसी प्रकार जब हमें उन्नत भक्तों की संगत मिले तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। दूसरा है अपने समान के व्यक्तियों की संगत, जब हमें उनकी संगत मिले तो उनसे हमें मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए। मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक दूसरे का सहयोग देकर भगवान की सेवा में जुड़े, ये नहीं कि हम ये दिखाने का प्रयास करें हम तुम्हारे से आगे हैं, हम तुम्हारे से अच्छे हैं, तुमने कम में को हम अच्छे हैं। नहीं, मित्रता का भाव का अर्थ है एक साथ मिलकर हम भगवान की सेवा में जुड़े हैं। और जब हमें हमारे से कम बुद्धि का व्यक्ति मिलता है तो उसके प्रति हमें क्या भाव प्रकट करना चाहिए? क्या भाव? दया का भाव। तो यहाँ जज भारत महाराज रघुनाथ कह रहे हैं कि हमें उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त करनी चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न थे ध्रुव महाराज की तपस्या से। तो भगवान ने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। ध्रुव ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे सदा उन्नत भक्तों की संगत मिले। तो यहाँ जद भारत कह रहे हैं हमें उन्नत भक्तों की संगत लेनी चाहिए, और क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान की कमी नहीं, कोने कोने में पाठशालाएं महाविद्यालय हैं जहाँ के भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, पर किस ज्ञान की कमी है? आध्यात्मिक ज्ञान की। बहुत कम स्थान है जहाँ ये महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। एक सम्मिश्र प्रभुपाद अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने पूछा, इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जो ये सिखाता है मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो जब शास्त्रों में ज्ञान का वर्णन होता है, जैसे कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा गुयम, ये जो ज्ञान है सब ज्ञानों का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान। तो आज कमी है आध्यात्मिक ज्ञान की समाज में, और इस कौन संस्था के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है पूरे समाज को। तो यहाँ जद भारत कह रहे हैं उत्तम भक्तों की संगत प्राप्त करोगे तो आपको असली ज्ञान मिलेगा, नकली ज्ञान नहीं। और उसी ज्ञान के पालन से ये जो भ्रम है, अज्ञानता है कि शरीर हमारा स्वरूप है, ये ज्ञान दूर होगा। अगर हम भौतिक ज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो ये है एक उपाय, और उसके पश्चात आप क्या करोगे? शरणम कीर्तनम का लाभ उठाओगे। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि मनाई थी, याद है कि भूल गए? तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, भक्ति का बीज उगेगा अगर आप उसे क्या पिलाओगे? हाँ, पानी। और पानी का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम, श्रवण की। तो यहाँ वही संदेश दिया जा रहा है। जद भारत कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में शास्त्रों का निर्णय क्या है? विदेश समेत अहम वेद यो वेदांत के वेदविद एवं चम सारे वेदों के द्वारा मैं जानना चाहता हूँ और शास्त्र का निर्णय क्या है, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जब प्रहलाद के पिता ने पूछा सब विषयों में सबसे प्रसिद्ध क्या ज्ञान तुमने प्राप्त किया है तुम्हारे अध्यापकों के द्वारा, तो बेटे ने क्या उत्तर में कहा, श्रवणम कीर्तनम। तो शास्त्रों का निर्णय यह है कि कलयुग में दोष ही दोष है, प्रेगन है इस कलयुग में, क्या है वो, हरि का नाम। तो कलि श्रवणम कीर्तनम के पालन से हमारी जो भक्ति की भावना है जो छुपी हुई है वो जागृत हो जाती है, भक्ति की भावना, और फिर हम कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं, जिसके पालन से आप कहाँ जा सकते हो, अमेरिका, इंग्लैंड, भगवान के धाम लौट सकते हो। तो इस श्लोक में उपदेश दिया जा रहा है कि अगर आप भगवान के धाम लौटना चाहते हो तो उत्तम संग भक्तों की संगत प्राप्त करो, उनकी शिक्षा का लाभ उठाओ। शिक्षा यह है कि हमें चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, शरणम कीर्तनम का हमें लाभ उठाना चाहिए, और शरणम कीर्तनम करोगे तो हृदय की मैल दूर होगी, चेतो दर्पण, और फिर आप भगवान के धाम लौट सकोगे। एग्री, हरे कृष्णा। तो आज के दिन अगस्त 13, 1965 हमारे परम गुरु भक्तिनंद स्वामी प्रभुपाद कहाँ गए थे, क्या कड़ा से गए थे, कहाँ, अमेरिका। तो आज हम संक्षेप में इस लीला की चर्चा करेंगे। आप पहले भी सुन बैठे हो कई बार, पर भगवान की लीलाओं और ये भक्तों की लीलाओं का भाव क्या रहता है, जितना सुनो उतना ही कम है। कभी आपको लगता है हरि नाम हम ले रहे हैं थक गए, नहीं, जितना लो उतना ही कम है। तो श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर 6 दिन महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। छोटी आयु में ही उनके पिता गौर मोंडे ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, और पिता की सदा यही इच्छा थी कि मैं Can you be a little softer there, Rupa? और पिता की यही इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़े हो गए और you can see a little bit in the back. और पिता की यही इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़े होकर क्या बने, राधा रानी जी का भक्त। माता की इच्छा थी मेरा बेटा इंग्लैंड जाए पढ़ने के लिए, वहाँ इंजीनियरिंग बन गया। तो पिता ने छोटी आयु में ही उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी। 7 साल की आयु में प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा की योजना की, और मानोगे नहीं, ये रथ जो प्रभुपाद बना रहे थे लगभग 100% जगन्नाथपुरी के रथ की नकल थी, और हर साल भीड़ बढ़ते गई। वैसे बच्चों की इच्छा होती है खेलें खिलौनों के साथ, तो प्रभा जी जब 6 साल के थे उन्होंने एक ही चीज मांगी, क्या, राधा कृष्ण की मूर्ति। उनकी इच्छा थी बचपन से भगवान की सेवा की जाए। वैसे प्रहलाद महाराज उनकी खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं थी, उनकी रुचि थी केवल कृष्ण भक्ति में। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इस प्रकार प्रभुपद पले थे आध्यात्मिक वातावरण में. उनके पिता घोर घोर ने बकायदा संतों की सेवा करते थे. उनके घर में रोज तीन चार संत आते थे भोजन खाने के लिए. ऐसे उनके पिता ज्यादा धनी नहीं थे. पिता का नाम क्या था? घोर मोंडे. वो प्रभुपद के शब्दों में कपड़े के व्यापारी थे, मिडिल क्लास. पर उनमें साधुओं को सेवा की बहुत इच्छा थी. और प्रभुपद जी ने कहा कि वो ये देखते भी नहीं थे कौन असली साधु है, कौन नकली है, कौन भंग लेता है, कौन है. प्रभु कोई भी साधु के वस्तु में आ गया उसकी सेवा कर देते. तो प्रभुपद जी स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में थे. उस समय गांधी जी की आंदोलन चल रहा था देश को स्वतंत्र बनाने के लिए. प्रभुपद जी के एक मित्र ने कहा यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध साधु है, मैं चाहता हूं तुम चलो उसे मिलने के लिए. प्रभुपद ने कहा मैं तो कई संतों को मिल चुका हूं और मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ, मैं किसी संत को नहीं मिलना चाहता. और प्रभुपद के शब्दों में उनके मित्र ने लगभग उन्हें घसीटा, नहीं ऐसा साधु कभी नहीं मिले होगे. तो पहली मुलाकात में ही जब प्रभुपद जी मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए ये है वो युवक जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करने में सहयोग देगा. क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? विश्व के कोने कोने में क्या फैलेगा? तो भक्ति सिद्धांत जी ने वैसे अपने कई प्रसिद्ध सन्यासियों को भेजा था इंग्लैंड. उन दिनों में भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश इंग्लैंड था, अमेरिका नहीं. पर बिना अधिक सफलता के वो वापस लौट आए थे. तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, जाओ पश्चिम देश में ये संदेश लेकर. भक्त प्रभुपद ने कहा कौन सुनेगा हमारे संदेश को, अब तो हमारा गुलाम देश है और पहले हमें देश को स्वतंत्र बनाने दो. क्योंकि उन दिनों में प्रभुपद जी गांधी जी के आंदोलन के सदस्य थे. और बाकी सिद्धांत जी ने कहा असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना. तो प्रभुपद जी ने स्वीकार किया कि भक्ति सिद्धांत जी के जो आर्ग्यूमेंट थे उनकी विजय हुई है. और प्रभुपद जी ये मुलाकात हुई थी 1922 में. कहाँ? कौन से शहर में? क्या कर रहा मैं तेजी से जवाब देना चाहे क्या कर रहा मैं. तो प्रभुपद जी के मन में ये भाव आ गया था गुरु महाराज ने आदेश दिया है. उन दिनों में ऐसी परिस्थिति में थे कि वो नहीं कर पाए. प्रभुपद जी अलग अलग शहर में थे, इलाहाबाद में जहाँ की गुड़िया मत के भक्त भक्तों का सहयोग दिया उन्होंने मंदिर खोलने में. 1932 में बॉम्बे में थे जहाँ की भक्ति सिद्धांत जी ने भेजा था अपने सन्यासियों को मंदिर खोलने के लिए. भक्ति सिद्धांत जी ने थोड़े समय में ही 24 केंद्र खोले थे भारत बर्मा इत्यादि में. तो 1965 में भक्ति सिद्धांत जी बॉम्बे आए थे ठाकुर जी की स्थापना करने के लिए. और उनके शिष्य ने कहा यह अभय बाबू सबसे ज्यादा सेवा उसने की है ये केंद्र की स्थापना में, उसे हमें इस मंदिर का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए. भक्ति सिद्धांत जी ने कहा जैसे हैं वैसे ही रहने दो, ठीक समय पर बहुत सेवा करेंगे। 1936 में भक्ति सिद्धांत जी के घर प्रकट होने से पहले उन्होंने एक पत्र डाला भक्ति प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो आपके लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ आदेश दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। भक्ति सिद्धांत जी ने उत्तर में वही कहा जो कि उन्होंने कब बोला था, 1922 में, तुम पढ़े लिखे युवक हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में प्रकट करो। और इसके पश्चात 1937 जनवरी 1 को भक्ति सिद्धांत जी प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद के मन में यही भाव था गुरु के आदेश को सफल बनाना। अलग अलग स्थानों में प्रभुपाद जी थे, झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य इसका उनके समान था। प्रभुपाद जी यही सोच रहे थे कैसे इस गुरु के आदेश को सफल बनाया जाए। और प्रभुपाद जी वृंदावन आए रहने के लिए, जहाँ की उन्होंने ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ किया। बैक टू गॉड हेड में एक पत्रिका प्रभुपाद जी छापते थे, रह रहे थे वृंदावन में, थर्ड क्लास के डब्बे में दिल्ली जाते थे, उधार लेकर किताब छापते थे बैक टू गॉड हेड, और फिर उसे क्या करते थे उसके बाद बांटते थे। एक समय प्रभुपाद जी बड़ी तेज धूप में बैक टू गॉड हेड पत्रिका को बांट रहे थे, जबकि एक गाय ने आकर उन्हें ठोकर मारकर गिरा दिया, तो प्रभुपाद को चोट लगी। जैसे ही होश में आए फिर उन्होंने प्रचार आरम्भ कर दिया। तो प्रभुपाद जी के ये मन में यही था, गुरु ने कहा था ग्रंथों का प्रकाशन करो। 1965 में राधाकुंड, वहां भक्ति सिद्धांत जी हजारों शिष्य की परंपरा ले जा रहे थे, वहां प्रभुपाद जी को मिले और भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा अगर भगवान तुम्हें तो सफलता दें तो क्या करना, क्या करना, ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना। तो ये था प्रभुपाद का आदेश। तो प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड पत्रिका छापी, फिर किसी ने प्रभुपाद जी को कहा फिर आप ये छोटी छोटी किताब छापते हो, बड़ी किताब छापो, छोटी किताब तो कई बार लोग फेंक देते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम 3 भागों में छापी। पहले भाग में जब छापी प्रभुपाद उस समय छिबीवाड़ा मंदिर में थे। आमे कितने भक्त छिबीवाड़ा मंदिर गए हो तो जी आपको खुशी होगी जानकर कि 4-5 साल पहले इसको अंदेली ने वो छिबीवाड़ा मंदिर खरीद लिया था और आज वहाँ बहुत ही सुंदर इसको उनका मंदिर बन रहा है। तो प्रभुपाद जी छिबीवाड़ा मंदिर में रहकर टूटा हुआ टाइपराइटर था प्रभुपाद के पास, उसे उसका सहयोग लेकर भागवतम वॉल्यूम 1 का अनुवाद कर रहे थे। बहुत ही कठिनाई से छापा, प्रभुपाद जी को धन की आवश्यकता थी तो गए दालमिया जी के पास। दालमिया जी एक धार्मिक खानदान था जिनका बड़ा विश्वास था वैदिक संस्कृति में, प्रभा जी ने उनके सेक्रेटरी से कहा, आप सेठ जी को बोलो ये भागवतम छापने में मदद है। सेठ जी ने कहा, मैनुस्क्रिप्ट दिखाओ हनुमान प्रसाद पोदार जी को, आप से जानते होंगे पोदार जी बड़े धार्मिक विचार व्यक्ति थे, गोरखपुर के गीता प्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। तो पोदार जी बड़े प्रभावित हुए, उनके कहने पर 5,000 रुपये का चंदा दे दिया। किसने? गीता प्रेस ने, गोरखपुर ने। दानवी जी ने 5,000 का चंदा दिया किताब छापने के लिए। तो वाई आर दीज बॉयज लीविंग क्लास? तो इस प्रकार भागवतम प्रथम स्कंध पहला भाग छापा था, फिर प्रभा जी को दूसरा भाग छापा, तीसरे भाग के लिए चंदा इकट्ठे करने प्रभा जी बॉम्बे आए। बॉम्बे आए वहां मिले, किसी ने कहा था उन्हें बॉम्बे में एक बड़ी धार्मिक औरत है जिसका नाम है श्रीमती मुरार जी। प्रभा जी उनके दफ्तर में गए, सेक्रेटरी ने कहा वो बड़ी व्यस्त है, वो नहीं मिल सकती। प्रभा जी ने 5 घंटे के लिए उनके दफ्तर के आगे बैठे रहे सीढ़ी में। प्रभा ने सोचा जब वो जाएगी यहाँ से ही जाएगी। शाम को जब जा रही थी उसने देखा एक साधु बैठे, उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा कौन है ये साधु? सेक्रेटरी ने कहा ये साधु वृंदावन से आया है, उसे धन चाहिए भगवतम के छापने के लिए। तो श्रीमती मुनार जी प्रभुपाद के पास पहुंची, स्वामी जी आपको क्या चाहिए? स्वामी जी ने कहा मैं ये भागवतम छाप रहा हूँ इसके लिए आर्थिक सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कल आना। तो अगले दिन गई, प्रभा जी गए, बड़ी प्रभावित हुई मैंने इसको देकर। उन्होंने प्रभा से कहा मुझे भागवतम सुनाओ। 2 हफ्ते के लिए रोज प्रभा जी उनके घर जाते थे उन्हें भागवतम सुनाने के लिए। तो इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के सामना करते करने के साथ प्रभा जी ने प्रथम स्कंद को 3 भागों में प्रकाशित किया, Volume 1, Volume 2, और Volume 3। जब 3 वॉल्यूम में छप गए तो प्रभा जी सोच रहे थे अब मेरे पर हथियार है विदेशियों को प्रचार करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी प्रपद हमें कहा सकते थे। आज अगर लोग आपकी संस्था की इज्जत देख करते हैं एक कारण ये है वो ग्रंथों को देखते हैं। तो प्रभा जी ने सोचा और प्रपद जी सोचते रहते थे विदेश कैसे जाऊं। उन दिन में इंग्लैंड का खास स्थान था भारतीयों के लिए, तो प्रभा जी इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे पहले। और प्रभा जी सोच रहे थे अमेरिका जाऊं तो कौन से रास्ते से सस्ता पड़ेगा, टोक्यो से जाऊं या यूरोप से जाऊं। तो यही प्रभा विचार कर रहे थे अमेरिका कैसे जाया जाए, पर अमेरिका जाना कोई आसान काम नहीं था। उन दिनों में भारत में भारत से विदेश जाना बहुत फॉर्मेलिटीज नियमों का पालन करना पड़ता था, और पैसे प्रभा जी के पास बिल्कुल धन नहीं था। जब वो वृंदावन में भी थे, वृंदावन से दिल्ली 3rd क्लास डब्बे में जाते थे, आलोक जाते थे 3rd क्लास में, और यहां से मथुरा टांगे में जाते थे क्योंकि वो ज्यादा सस्ता था। आप तो जाते हो टैक्सी में, है ना। तो प्रभुपाद जी गए, सोचे थे कैसे जाया जाए, पर और जाने के लिए वीजा भी चाहिए। एक प्रभुपाद जी के जान पहचान के व्यक्ति थे, मिस्टर अग्रवाल नाम के, जो व्यापारी थे, जिनका एक बेटा था अमेरिका बटलर में, बटलर पेंसिल्वेनिया। बटलर एक छोटा शहर है अमेरिका में, जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सरकार जीप बनाती थी, जीप युद्ध में लड़ने के लिए। और वहाँ एक स्टील की फैक्ट्री थी जहाँ गोपाल अग्रवाल एक इंजीनियर था। उसके पिता थे अग्रवाल, जो कि मथुरा में रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी मिले बाय चांस इस अग्रवाल को। प्रभुपाद जी ने कहा, आपका बेटा अमेरिका में है? हाँ, बोलो क्या सेवा चाहिए? मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, मुझे निमंत्रण चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। तो अग्रवाल ने कहा हो जाएगा। अग्रवाल ने कई संतों का सहयोग दिया था अमेरिका जाने में। तो अग्रवाल ने अपने बेटे को लिखा, एक ऐसी भक्तिरंद स्वामी हैं जो कि बड़ा प्रसिद्ध संत है, जो अमेरिका आना चाहता है चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए। तो हम कृपा करके उसको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे दो। स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब है एक पत्र जिसमें वो कहेगा, ये भक्तिवेदांत स्वामी जब अमेरिका आएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उनका सारा खर्चा मैं दूंगा। ऐसा पत्र हो तो वीजा मिल जाता है जल्दी। तो प्रभुपाद ने उम्मीद नहीं की थी कि अग्रवाल अपने बेटे को लिखेगा। दो महीने बाद प्रभुपाद को एक पत्र आया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, जिसमें उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके नाम पर स्पॉन्सरशिप पत्र आ गया है अमेरिका से, अब आओ पासपोर्ट बनाने के लिए। प्रभुपाद ने वो पत्र पढ़ा, हैरान हो गए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं था अग्रवाल अपने बेटे को कहेगा, और बेटा हो तो काम ये काम करेगा। तो प्रभुपाद जी ने फिर गोपाल अग्रवाल ने इंडियन काउंसलर को न्यूयॉर्क में लिख के दिया कि भक्तिवेदांत स्वामी को 2 महीने के लिए अमेरिका आने दो, जो भी खर्चा होएगा 2 महीने के दौरान वो मैं दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट तो बन गया। फिर प्रभुपाद जी को एक पी फॉर्म चाहिए था उन दिनों में। पी फॉर्म मतलब कि उसे वो फॉर्म हो, आप ये दिखाते हो इस व्यक्ति का भारत में कोई कर्जा नहीं है, यानी आप कर्जा वगैरह उठाकर भाग जाओ। तो प्रभुपाद जी ने पी फॉर्म के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई किया। तो उन्होंने वहाँ के अधिकारी ने कहा, स्वामी जी आपको पी फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो निमंत्रण है आपका, ये एक व्यक्ति ने दिया है, आप धर्म के नाम के लिए जा रहे हो तो संस्था का स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। प्रभुपाद का, लेट मी सी योर बॉस। बॉस का नाम था मिस्टर राव। तो प्रभुपाद जी राव को मिलने गए। प्रभुपाद जी ने सेक्रेटरी से कहा, फाइल भेज देना राव को। राव मिस्टर राव प्रभुपाद जी को मिलने आए और कहने लगे, स्वामी जी आपका काम हो गया। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। तो पासवर्ड मिल गया, फिर वो हमें मिल गया। क्या बचा अभी? टिकट और वीजा। तो क्योंकि निमंत्रण था, प्रभा जी का 3 महीने का वीजा भी मिल गया, 3 महीने के वीजे के। अब क्या बच गया? टिकट। जिसके पास प्रभा जी जाते थे वो कहते थे, इस बुरी उम्र में आप जाओगे, मर जाओगे उधर शादी में। कईयों ने कहा, इतना पैसा खर्च कर विदेश जाने का क्या फायदा, हमारे देश में ही प्रचार करो, देश में क्या प्रचार की कमी है। तो जिसके पास भी प्रभा जी गए, लगभग सब ने कहा कि हमारे पास बहुत महंगाई है, खर्च इतना दान देने की शक्ति नहीं है। किसी ने प्रभा जी से कहा, बॉम्बे में वो श्रीमती मुरार जी जिसने आपका सहयोग दिया था भागवतम छापने में, उसके जहाज चलते हैं पानी के, उसे के लिए आप मांगते। फिर प्रभा जी बॉम्बे आए, बॉम्बे आए श्रीमती मुरार जी के दफ्तर में पहुंचे, और जब उसके दफ्तर में पहुंचे, उनके सेक्रेटरी का नाम था चोकसी, चोकसी ने कहा कि एक वही स्वामी जिसका आपने सहयोग दिया था भागवत छापने में, वो आया है फिर से आपसे कुछ भीख मांगने के लिए। अब वो अमेरिका जाना चाहता है, वो चाहता है कि आप सहयोग दो। तो चोकसी को प्रभा जी ने सिखा दिया था कि तुम मैडम को कहना कि मेरे में बड़ा उत्साह है विदेश जाने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए। तो प्रभा जी मिले श्रीमती मुरार जी से। श्रीमती मुरार जी ने कहा, आप 70 साल की आयु में जाओगे, इतनी बड़ी आयु में कोई जान पहचान नहीं आपका, क्या करोगे उधर जाकर? आप भारत में ही रहो और हमें भागवतम सुनाओ। प्रभु जी का नहीं, गुरु का आदेश है कि चेते रहे महाप्रभु के संदेश को विश्व के हर कोने में पहुंचाना चाहिए, मुझे जरूर जाना है। स्वामी जी आप मर जाओगे उधर, इस उम्र में जाओगे, इतनी ठंडी है, बर्फ है, कोई जान पहचान नहीं है। प्रभा जी ने बड़े दृढ़ भाव से कहा, नहीं कुछ नहीं होगा मुझे, घबराओ मत। फिर जब श्रीमती मुरार जी ने देखा कि प्रभा जी का इतना गहरा भाव है, तो उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी मैं तुम्हें भेज देती हूँ पर पानी के जहाज में, कार्गो शिप में। पानी के जहाज के भी कई कई टाइप हैं, एक ऐसा लग्जरी ताजमहल जैसे एयर कंडीशन, एक होता है साधारण पानी का जहाज, तो सबसे घटिया है कार्गो शिप। आप लोग मालगाड़ी देखते हो, आप लोग मालगाड़ी में कभी बॉम्बे जाते हो? कोई मुश्किल टिकट दे तो भी नहीं जाओगे। तो श्रीमती मुरार जी ने कहा, मैं तो कार्गो शिप जाते हैं अमेरिका, उसमें आपको टिकट दे सकती हूँ। प्रभा जी का मंजूर है। तो उसने कार्गो शिप में, वो जहाज के कैप्टन थे अरुण पांड्या, बड़े धार्मिक विचार के, और श्रीमती मुरार जी ने प्रबंध किया, 500 रुपये दिए अपने सेक्रेटरी को प्रभा जी के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए, और दलिया प्लेन में शिप में रखा, और कैप्टन को बोला कि स्वामी जी की देखभाल करना, और वो पूरे जहाज में एक ही कमरा था पैसेंजर के लिए, वो कमरा था प्रभा का, और कैप्टन पांड्या और उसकी पत्नी बड़ी होशियार थी, और उसकी पत्नी के पास जोशी की योग्यता थी, तो दोनों ने प्रभुपाद जी की बड़ी देखभाल की। और केवल 40 रुपए के साथ और 200 सेट भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रभुपाद जी चले। प्रभुपाद जी बॉम्बे से आए कलकत्ता, वैसे तो प्रभुपाद जी की बहुत जान पहचान थी कलकत्ता में, पर अब आए थे कलकत्ता सन्यासी के रूप में। और लखनऊ में एक संगीतकार थे मिस्टर भट्टाचार्य, तो प्रभुपाद जी एक बार लखनऊ में लखनऊ के राजपाल के घर में गए थे लेक्चर देने के लिए, जहाँ वो भट्टाचार्य को मिले थे। तो भट्टाचार्य ने प्रभुपाद जी का सहयोग दिया, प्रभुपाद जी के साथ सब अखबारों में गए ये सूचना के साथ, ऐसी भक्तिवृंद स्वामी अमेरिका जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए। कई अखबारों में गए सबने के लिए, स्वामी जी ये खबर कोई नहीं पड़ेगा, उन्हें छापने से इनकार कर दिया। एक छोटे अखबार ने कहा, प्रभुपाद जी ने एक बुकलेट छापी थी माय मिशन, कि हम ठीक है छाप देंगे। तो क्या करा, जहाज में चलने से पहले प्रभुपाद जी मायापुर धाम में आए, वहाँ भक्ति सिद्धांत जी के समाधि में उन्होंने प्रणाम किया और भक्ति सिद्धांत जी से प्रार्थना की कि कृपा करके उनकी योजना सफल रहे। और फिर प्रभुपाद जी चले, कहाँ पहुँचे, कलकत्ता। जब वो कलकत्ता पहुँचे, अगस्त 13, 1935 9 बजे सुबह वो जहाज चला, कहाँ से, कलकत्ता से। और वो जहाज में एक ही पैसेंजर था, जैसे हम जानते हैं प्रभुपाद जी के बाद केवल 40 रुपए थे, और उन्हें छोड़ने के लिए कोई नहीं आया। टैक्सी में प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे थे। और आज के दिन प्रभुपाद जी चले थे भारत से उनके श्रीमद् भगवतम को लेकर, और वो चले थे कहाँ, अमेरिका के लिए। तो उस समय प्रभुपाद की आयु थी 69, उनका 70वां जन्मदिन उन्हें जहाज में मनाया। और प्रभुपाद जी अपने साथ चैतन्य चरितमृत ले गए थे जहाज में पढ़ने के लिए। भक्ति सिद्धार्थ जी भी चैतन्य चरितमृत को पढ़ते थे, और प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे। और रास्ते में 13वें दिन को हार्ट अटैक आया, 2 दिन लगातार प्रभुपाद जी को लगा कि शायद वे योजना सफल नहीं होगी। 3 महीने का वीजा था, प्रभुपाद जी चले थे इस विचार के साथ 2 महीने में वापस आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के 2 दिन लगातार हार्ट अटैक आए। फिर प्रभुपाद जी को भगवान एक सपना आया, जिसमें भगवान ने कहा, जिसमें उन्होंने देखा भगवान नाव चला रहे हैं, नाव में बैठे हैं कौन, श्री प्रभुपाद, और सारे देवता और भगवान कह रहे हैं घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। तो प्रभुपाद जी फिर सितंबर में 35 दिन की यात्रा के पश्चात न्यूयॉर्क में बॉस्टन पहुंचे। जब वो बॉस्टन पहुंचे, उन्होंने देखा वहां का वातावरण, देखा कि लोग इतने गहराई के साथ डूबे हुए हैं माया के कार्यों में। प्रभुपाद जी ने सोचा कौन सुनेगा इस संदेश को, उन्होंने कविता भी लिखी, और पांच में उन्होंने कहा राधा रानी की कृपा से संभव कार्य भी संभव हो सकता है। विप्रभा जी न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क में एक साल के परिश्रम के पश्चात उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और पहले केंद्र का निर्माण किया। तो आज वो शुभ दिन है जब 1965 में प्रभुपाद जी केवल 40 रुपए के साथ क्या कर चले थे महाप्रभु के आदेश को सफल बनाने के लिए। हमें इस शुभ अवसर पर प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने इतना त्यागा, इतनी कठिनाई सहनी पड़ी हम सब भक्तों के लिए। हमें यह निर्णय करना चाहिए हमने प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर चलना है। उनकी शिक्षा क्या थी, जाए जगताय कहो सब जगह कृष्ण का प्रचार करें। और हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि जो भक्ति के अनुकूल है वो हमने स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसे रूप गोस्वामी ने कहा कि जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, कृष्ण भक्ति को मत पसंद नहीं दो। आप सब भक्त जनों से यही निवेदन है, शिक्षा का लाभ उठाइए और भागवतम को पढ़िए, भागवतम को बांटिए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।